नमस्कार भारत, तारीख 6 नवंबर दिन शुक्रवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। ईवीएम में बंद हुआ बिहार का जनादेश, राजनीतिक पार्टियों ने किए जीत के दावे।
190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190।
भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे।
करेंगे विश्लेषण, चुनाव नतीजों का बिहार की सियासत पर क्या होगा असर, और छत्तीसगढ़ में पंचायत ने बलात्कार के अभियुक्त को ही सौंप दी 13 साल की पीड़ित बच्ची।
किसी के ऊपर शेर ने झपट्टा, बाघ ने झपट्टा मारा, किसी तरह से बच के या उसके जो भी है आफ्टर इफेक्ट लेके वो अलग हुई और आप वापस उसको परोस दिए।
होंगी खबरें खेल की भी और अखबारों की समीक्षा भी, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। बिहार में अंतिम चरण का मतदान कल पूरा होने के बाद दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। टीवी चैनलों ने कल अपने एग्जिट पोल भी जारी किए, जिनमें दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर बताई गई है। हालांकि कई एग्जिट पोल में महागठबंधन को आगे बताया गया है। चुनावों के नतीजे रविवार को आएंगे। ब्रिटेन के मिस्र के पर्यटन शहर शर्म अल शेख के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाने के बाद कई और देशों ने भी शर्म अल शेख के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं। शनिवार को शर्म अल शेख से सेंट पीटर्सबर्ग जा रही रूसी उड़ान सिनाई में क्रैश हो गई थी, जिसमें सवार सभी 224 लोग मारे गए थे। ब्रिटेन के बाद अब नीदरलैंड्स और जर्मनी ने भी शर्म अल शेख के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। बेल्जियम और फ्रांस ने भी यातायात चेतावनी जारी की है। शर्म अल शेख में फंसे हजारों ब्रितानी नागरिक आज से वापस आने लगेंगे। ब्रितानी सरकार का मानना है कि विमान के विस्फोटक का शिकार होने की प्रबल संभावना है। अमरीका का कहना है कि वह भी चरमपंथी हमले की संभावना को गंभीरता से ले रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन मेडिसन्स ऑफ फ्रंटियर यानी एमएसएफ का कहना है कि पिछले महीने अफगानिस्तान के कुंदूज में उसके अस्पताल पर हमले के दौरान जब डॉक्टरों और मरीजों ने जान बचाकर भागने की कोशिश की, तब अमरीकी सैनिकों ने उन पर हवा से गोलियां चलाईं। कुंदूज में हुए हादसे की समीक्षा करते हुए एमएसएफ ने कहा है कि अमरीका के AC-130 हेलीकॉप्टर ने 1 घंटे तक अस्पताल पर गोलीबारी और बमबारी की। इस दौरान एमएसएफ ने अमरीका से कई बार हमला रोकने की गुहार लगाई। एमएसएफ के महानिदेशक क्रिस्टोफर स्टोक्स ने कहा है कि ये मानना मुश्किल है कि हमला एक गलती थी। उन्होंने कहा, अस्पताल के अंदर से देखने पर यह समझ में आता है कि हमला नष्ट करने और जाने लेने के मकसद से किया गया। मैं 2 सप्ताह पहले कुंदूज में था और ये मेरी राय है, लेकिन हम अब भी ये नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। ये थे एमएसएफ के महानिदेशक क्रिस्टोफर स्टॉक्स के शब्द। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट और कंजर्वेटिव पार्टियों के सत्ताधारी गठबंधन ने प्रवासियों की शरण लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर विवाद को सुलझा लिया है। चांसलर अंगेला मेर्कल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इसके लिए जर्मनी 5 विशेष केंद्र स्थापित करेगा। इनमें उन देशों के प्रवासियों को रखा जाएगा जो सुरक्षित माने जाते हैं, जैसे कि बाल्कान राष्ट्र, और वो प्रवासी जिनके दोबारा जर्मनी में घुसने पर पाबंदियाँ हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्थान नासा ने नया डाटा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अरबों साल पहले कैसे सूरज ने मंगल ग्रह के वातावरण को नष्ट किया। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका, आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम नमस्कार भारत। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर सुन रहे हैं लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। बिहार में कल 5वें और आखिरी चरण के मतदान के साथ ही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इंतजार अब बस रविवार का है, जब बिहार का जनादेश सबके सामने आएगा। हालांकि जैसे ही कल मतदान पूरा हुआ, टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल यानी चुनाव बाद के सर्वेक्षण आने लगे। ज्यादातर सर्वे महागठबंधन के पक्ष में दिखाई देते हैं, तो कुछ ने एनडीए को बड़ी कामयाबी मिलने का अनुमान भी जताया है। किसके दावे में कितनी सच्चाई है, इसके लिए तो रविवार तक इंतजार करना होगा। वैसे राजनीतिक पार्टियां तो लगातार अपनी जीत के दावे कर ही रही हैं। कल राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने तो कुल 243 सीटों में से अपने गठबंधन को 190 सीटें तक मिलने का दावा कर डाला, और इसके लिए उन्होंने कारण भी बताया।
190 सीट हमको आएगा गठबंधन को 190। अब बीजेपी को मतलब 10 या फिर 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला नहीं तो भी साफ है। 190 सीट पर हमारा आधार है। सीधा मुद्दा था सारा बैकवर्ड और जो अपर कास्ट के लोग थे वो बिल्कुल भोथर हो गए, बिल्कुल स्लो हो गए, बिल्कुल कहीं बूथ पर भी नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि कौन मुंह लेकर हम जाए नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना।
ये थे लालू प्रसाद यादव। दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वैसे कल जब एक पार्टी कॉन्फ्रेंस में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना बोले कि वो तो सिर्फ 8 तारीख को ही बोलेंगे। अमित शाह भले ही चुप हों लेकिन पार्टी के दूसरे नेता जीत के दावों में पीछे नहीं हैं। शाहनवाज हुसैन ने कल अपना वोट डालने के बाद कहा,
भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी इसमें कोई शक नहीं है, हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल ये जान लें दिखाने वाले कि नीतीश कुमार जी का एग्जिट होगा बिहार से, सरकार से वो जाने वाले हैं। हम लोग सरकार में आने वाले हैं और नीतीश कुमार जी जाने वाले हैं।
ये थे भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन। सबके अपने अपने दावे। वैसे इस तरह के दावे तो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी सुनने को मिलते रहे हैं। बात अगर बिहार के चुनाव की करें तो इस बार का बिहार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं लगता, पूरे देश की नज़रें इस पर टिकी हैं। इन चुनावों को कवर करने के लिए बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी भी बिहार के दौरे पर हैं। मैंने कल पटना में उनसे बात की और जानना चाहा कि इस बार के चुनावों को वो पिछली बार या इससे पहले हुए चुनावों से किन मायनों में अलग और ख़ास मानते हैं।
देखिए अशोक, कई चीज़ें हुई हैं। जिस तरह का प्रचार इस बार राजनीतिक दलों की ओर से हुआ है उसका पैमाना बहुत ही बड़ा था। शायद बिहार के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर चुनाव प्रचार हुए हैं और पहली बार देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है चुनाव प्रचार में। और महागठबंधन की ओर से भी मैं कहूँगा, महागठबंधन ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया चुनाव प्रचार पर, बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार हुए। हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि उनका स्तर राज्य के प्रादेशिक नेताओं तक ही सीमित था क्योंकि जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय पार्टी ही है। दूसरा सबसे बड़ा मुझे देखने को मिला मुद्दा जिस पर जैसे शुरुआत हुई थी चुनाव की, बीजेपी ने अच्छी शुरुआत की थी, विपक्ष ने भी अच्छी शुरुआत की थी, दोनों विकास के मुद्दे पर दावे प्रति दावे कर रहे थे कि बिजली कब आई, सड़क कैसे अच्छी बनी, लेकिन बाद में जिस तरह विकास के मुद्दे पीछे छूटते गए और जिस तरह पर्सनल अटैक हुए, ये भी एक नई तरह से नई स्थितियों में देखने को मिला। और साथ में एक और चीज़ थी जो शायद आने वाले नतीजों के दिनों पर भी आप देखिएगा कि पहली बार बिहार में इस तरह के बाइपोलर चुनाव हुए कि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की ओर से। तो ये 3-4 चीज़ें थीं जो बिहार में पॉलिटिकल स्तर पर चुनाव प्रचार के स्तर पर देखने को मिली।
पंकज जी, अब सारे चरणों का मतदान हो चुका है, बिहार का जो जनादेश है वो ईवीएम मशीनों में कैद है, लेकिन जिस तरह सर्वे आए हैं और कई सर्वे ज्यादातर सर्वे अभी कांटे की टक्कर बता रहे हैं, तो आप तमाम जगहों पर गए, चुनाव क्षेत्रों में गए, आपका अंदाजा अब क्या कहता है, मामला वाकई कांटे का है या फिर किसी भी गठबंधन को एक दूसरे पर थोड़ी बहुत बढ़त है?
देखिए अशोक, मुझे भी कई फ़ोन आए हैं कल से और आप यकीन कीजिए कि कई लोग बीबीसी के नाम पर ये पूछ रहे हैं कि बीबीसी का सर्वे क्या कह रहा है। मैंने कई लोगों को स्पष्ट किया कि भाई हम सर्वे नहीं करते, बीबीसी कभी कोई सर्वे नहीं करता चुनाव के बाद या चुनाव के पहले भी, लेकिन ये चुनाव बहुत ही करीबी मुकाबला है और शायद हाल के दिनों में इतना करीबी मुकाबला किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला है अभी तक, जैसे कि आकलन किए जा रहे हैं। मैं इसको आकलन के नज़रिए से बता रहा हूँ। कल को हो सकता है नतीजे आए और किसी एक गठबंधन, किसी एक पार्टी की ओर लैंडस्लाइड विक्ट्री भी हो सकती है, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता ईवीएम से क्या नतीजा निकलता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरह वोटिंग हुई है बिहार में, बड़ा मुश्किल है कहना अशोक, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि महादलित उसके साथ है, दलित उसके साथ है, तो सामने वाला गठबंधन ये दावा करता है कि उसके साथ पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं और भी कई लोग हैं। तो ये कम्बिनेशन इस स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि इतना तो सच है अशोक कि जो भी होगा बहुत करीबी ही होगा और शायद जो पार्टी जीते वो 10-15 सीटों के अंतर से जीते, 4-5 के अंतर से जीते, इतना करीबी हो सकता है, ये हम उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है। जैसे कई एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कोई एक पार्टी लैंडस्लाइड भी जीत सकती है, जनता का मूड है। जैसे दिल्ली चुनाव में हुआ था, हर कोई कह रहा था कि बड़ा करीबी मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की पार्टी से, लेकिन अंततः नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल की पार्टी ने धूम मचाई और भाजपा सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई।
ये थे बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी, जो बता रहे थे कई बार नतीजे जब सामने आते हैं तो किस तरह तमाम सर्वे और अनुमान धरे के धरे रह जाते हैं। वैसे चुनाव नतीजों के बाद उभरने वाले हालात भी कम दिलचस्प नहीं होंगे। अब जीत चाहे किसी भी गठबंधन को मिले। हमारे साथी संदीप सोनी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी से और दोनों ही गठबंधनों की विजय या पराजय के बाद पैदा होने वाले हालात के बारे में पूछा। लेकिन पहला सवाल यही था कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन जीतता है तो राज्य की सियासत पर इसका क्या असर होगा?
अगर चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में आते हैं तो लालू जी और नीतीश जी के लिए अस्तित्व का संकट बढ़ जाएगा। उसकी वजह है, एक तो नीतीश जी का नेचर अपना, और लालू जी जिस तरह के आरोपों से घिरे हुए हैं, सजा उनको मिली हुई है, कोर्ट में मामला चल रहा है, वो पार्टी पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अपने परिवार के लोगों को इस बार उन्होंने आगे किया है, लेकिन अगर वो सरकार में नहीं आते तो फिर पार्टी पर उनकी पकड़ नहीं रह जाएगी। और लालू जी, हमें लगता है कि आने वाले 5 साल उनके जीवन के सबसे कठिन 5 साल होने जा रहे हैं। नीतीश जी का जहां तक सवाल है, नीतीश जी की गुडविल है पूरे राज्य में, लेकिन जब वो आम चुनाव हारे थे उसके बाद लगभग बिल्कुल जैसे कहते हैं कोमा में चले गए, किसी से बात नहीं करते। जो इस मनास्थिति से गुजरने वाले लोग होते हैं उनके लिए चैलेंजेस और कठिन हो जाते हैं। नीतीश जी लालू जी नहीं है, ना वो जन नेता है, वो एक अच्छे प्रशासक है। तो सबसे बड़ी चीज ये होने जा रही है कि नीतीश जी के लिए अस्तित्व का संकट होगा, जिससे पार पाना या जिससे उबरना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस के लिए भी बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बिहार में पहले से भी कांग्रेस नहीं है। उनको उम्मीद है कि इस चुनाव में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो लोग थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उनकी उस उम्मीद पे भी पानी फिरेगा। और एक फैक्टर और है जो मुझे नजर आता है, एनडीए अगर थिन मार्जिन से सरकार बनाती है तो सरकार डिपेंड करेगी रामविलास पासवान पर, उपेंद्र कुशवाहा पर और मांझी पर। ऐसे में सरकार की स्थिरता पर भी थोड़ा सवालिया निशान रहेगा।
यदि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, उस सूरत में बिहार की सियासत किस तरह बदलेगी?
बीजेपी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उसके बाद आएगी। हो सकता है जो कानून व्यवस्था की स्थिति हम लोग देखते रहे हैं बिहार में और जिसका बखान नीतीश जी अपने भाषणों में करते रहे हैं और लगातार करते रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो चीजें बढ़ें। ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं नीतीश और लालू के बीच में सामंजस्य अगर बन पाता है, जैसा कि इस इलेक्शन के दौरान बहुत अच्छा दिखाई दिया, लेकिन मुझे आशंका है कि सरकार बनने की स्थिति में यह सामंजस्य और यह समझ बनी रह पाएगी, थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। उन्होंने किसी सभा में बोला भी कि उनका बेटा किसी इम्पोर्टेंट रोल में आएगा, तो इम्पोर्टेंट रोल अगर गवर्नमेंट बनने पर देखें तो ये हो सकता है डिप्टी सीएम बने या इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज मिले। ये भी चर्चाएं हैं कि जितनी सार्वजनिक कामों वाली जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आरजेडी लेगा। इससे क्या होने जा रहा है कि अगर नीतीश की पकड़ सरकार पर जैसे एनडीए के दौरान थी वैसी नहीं रही, जिसकी आशंका बहुत ज्यादा है, तो जिस विकास के रास्ते पर बिहार चल रहा था, जिसके लिए नीतीश जी को जाना जाता है, नीतीश जी वो काम करने की जगह सरकार को मैनेज करने के काम में उनको अपना समय लगाना पड़ेगा। राजद के अपने जो इंटरेस्ट है, जो मैंने बात कही, तो लगातार एक प्रेशर नीतीश पर रहेगा। सरकार स्टेबल कितना रह जाएगी इस पर भी सवालिया निशान है। बिहार को एक नेता भी मिलने जा रहा है, वो नेता है चिराग पासवान। जो बाकी युवा नेता मौजूद हैं, चाहे नीतीश मिश्रा हो, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, या लालू जी के बेटे बेटी हो, उन सबके मुकाबले 19 नहीं कहूंगा मैं, 25 कहूंगा, वो 25 है। तो एक ये उपलब्धि जरूर इस चुनाव की या अगले 5 सालों की रहने वाली है कि बिहार को एक युवा नेता मिलेगा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी, बता रहे थे कि बिहार में चिराग पासवान के रूप में एक नया युवा नेता उभर रहा है।
बीबीसी इंडिया बोल।
बिहार का नतीजा 8 नवंबर को आएगा। राज्य में महागठबंधन या एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव पर भी डालेंगे प्रभाव। तो बिहार चुनाव का देश की राजनीति पर कितना होगा असर? किसका विकास मॉडल चलेगा, बिहार का या गुजरात का? इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। बहस में शामिल होने के लिए डायल करें 1800 11 और अपने सवाल आप हमें bbchindi.indiabol@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
और दूसरी तरफ पुरस्कार लौटाने का सिलसिला लगातार जारी है। कल 24 और फिल्मकारों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए। मुंबई प्रेस क्लब में फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फिल्मकारों ने कहा कि बढ़ती धार्मिक असहनशीलता पर सरकार के रवैये के विरोध में उन्होंने ये फैसला लिया है। फिल्मकारों ने यह भी कहा कि पुणे फिल्म संस्थान के हड़ताल कर रहे छात्रों के समर्थन में जब कुछ फिल्मकारों ने पुरस्कार लौटाए थे तो सरकार का रवैया उनके खिलाफ ही रहा। इससे पहले मशहूर बुद्धिजीवी अरुंधति रॉय ने भी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी। लेकिन उधर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कुछ लोगों इन पुरस्कार लौटाने वालों के बारे में कहा है कि कुछ लोग देश में गलत प्रचार कर रहे हैं और दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
दुनिया भर में भारत का प्रतिष्ठा खराब करने के लिए भी लोगों ने प्रयास किया है। The entire effort is to derail the developmental agenda of the Narendra Modi led government.
नायडू कह रहे थे कि पीएम मोदी का जो विकास का एजेंडा है उसको पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है। अवार्ड लौटाने वालों के बारे में नायडू ने कहा कि इन लोगों की कोशिश है कि वो सरकार के विकास एजेंडे से ध्यान हटा दें। नायडू के मुताबिक उन्होंने एक किताब भी जारी की है जो अवार्ड लौटाने के बाद देश भर में जो चर्चा शुरू हुई है उस पर ये किताब उसका एक दूसरा पक्ष उजागर करेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कोई 30 किलोमीटर दूर मंदिर हसौद थाने के एक गांव में पंचायत ने बलात्कार की शिकार 13 साल की एक बच्ची को बलात्कार के अभियुक्त के साथ ही भेजने का फैसला सुनाया। बताया जाता है कि जिस अभियुक्त के साथ बच्ची को भेजा गया वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यही नहीं, जाति पंचायत के इस फैसले की जब शिकायत की गई तो पीड़िता के परिवार का ही सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पूरा ब्यौरा बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
छत्तीसगढ़ में जाति पंचायतें अब सारे नियम कानून को ठेंगा दिखाने लगी हैं। राजधानी रायपुर से लगे हुए गांव में लगभग 1.5 साल पहले यादव समाज की 13 साल की बच्ची के साथ शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता गोवर्धन धीवर ने कथित रूप से दुष्कर्म किया। बच्ची जब गर्भवती हो गई तो यादव और धीवर दोनों ही जातियों की पंचायत बैठी और पंचायत ने बच्ची को आरोपी युवक के ही साथ रहने का फरमान सुना दिया। युवक बच्ची को अपने घर ले आया और गायों को बांधने और उनका चारा रखने वाले कमरे में बच्ची को रहने की जगह दे दी गई। लगभग 8 महीने बाद बच्ची ने एक बेटी को जन्म दिया। आरोप है कि दुष्कर्म के आरोपी युवक की पत्नी ने नवजात को पटक कर उसके पैर तोड़ डाले। दुष्कर्म की शिकार बच्ची पर भी लगातार जुल्म किया गया। दुष्कर्म के शिकार बच्ची की मां कहती हैं,
का के हेल देख दे सब उन्हें छोड़ दे ना चल ला ये बने हो जी का हाथ बोल है सी की के तब वो दे हेल पूरा।
उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। उन्होंने मेरी बच्ची की बेटी के हाथ पैर तोड़ दिए। मेरी बेटी के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह रोज मेरे घर आती और फिर खाना खाकर जाती थी। जब बात हद से ज्यादा बढ़ी तो पीड़िता अपने 3 महीने की बेटी और अपने माता पिता के साथ थाने पहुंची। पंचायत को पता चला तो पंचायत ने पीड़िता और उसके पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शताब्दी सुबोध पांडे कहती हैं,
आयोग के हस्तक्षेप से और बाल कल्याण समिति के आदेश से बालिका गृह में रखा गया है क्योंकि उसके पिताजी का कहना था कि गांव में उसको रखना ठीक नहीं है क्योंकि वो खतरे में है। दुष्कर्म की शिकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ उनका दाना पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करना, उनका आना जाना, उनसे रिश्तेदारी रखना बंद करना ये उचित नहीं है।
हालांकि रायपुर क्षेत्र के आईजी पुलिस जीपी सिंह का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वे सामाजिक बहिष्कार की बात से इनकार कर रहे हैं।
पानी बंद करने का भी कोई शिकायत नहीं है थाने में। थाने वाले से कुछ लोगों को भेजा भी था गांव में तो ऐसा कोई अभी इमीडिएटली ऐसे कोई साक्ष्य नहीं आया हुक्का पानी बंद करने का, तो हुक्का पानी बंद होगा तो तत्काल कार्रवाई हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
सामाजिक कार्यकर्ता और परिवार न्यायालय के सदस्य सत्यभामा अवस्थी का कहना है कि इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण ही जाति पंचायतें मजबूत हो रही हैं।
आज भी वो पंचायतें जो हैं उसमें पुरुष प्रधान हैं। मुझको इतनी सारी पंचायतों से सापका पड़ता, पर कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई महिला भी है उस पंचायत के पदाधिकारियों में। 14-15 साल की जो कि बच्ची है, एक तो वो विक्टिम है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, किसी के ऊपर शेर ने झपट्टा, बाघ ने झपट्टा मारा, किसी तरह से बच के या उसके जो भी है आफ्टर इफेक्ट लेके वो अलग हुई और आप वापस उसको परोस दिए।
इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू ये है कि पीड़ितों के आरोप के बाद भी इस मामले में अभी तक फैसला सुनाने वाली जाति पंचायत के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस फिलहाल शिकायत और सबूतों की शब्दावली में मामले को टालने में जुटी हुई है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ब्रिटेन के बाद जर्मनी और नीदरलैंड्स ने भी मिस्र के शर्म अल शेख के लिए उड़ानें रोक दी हैं, जबकि बेल्जियम और फ्रांस ने यात्रा चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन और अमेरिका का कहना है कि शनिवार को क्रैश हुए रूसी विमान के पीछे चरमपंथियों का हाथ भी हो सकता है। बीबीसी के संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
ब्रिटेन के बाद कई और देशों ने मिस्र के पर्यटन शहर शर्म अल शेख से आने वाली फ्लाइटों पर पाबंदियां लगाई हैं। बीते शनिवार को शर्म अल शेख से रूस जाने वाली रूसी उड़ान सिनाई में क्रैश हो गई थी, जिसमें सवार सभी 224 लोग मारे गए थे। नीदरलैंड्स और जर्मनी की एयरलाइनों ने अब शर्म अल शेख के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, जबकि बेल्जियम और फ्रांस ने यात्रा चेतावनी जारी की है। ब्रिटानी सरकार ने विमान के विस्फोटक का शिकार होने की प्रबल संभावना जताई है। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि अब ये संभावना ज्यादा है कि चरमपंथियों ने ही विमान को गिराया है। आज से शर्म अल शेख में मौजूद हजारों ब्रितानी पर्यटकों को वापस लाया जाएगा। ब्रितानी यातायात मंत्री पैट्रिक मैकलॉलिन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा,
As a result of the assurances we've got, we are able to...
जो आश्वासन हमें मिला है उसके नतीजे में शुक्रवार को उड़ानें यात्रियों को लेकर पहुंचेंगी। यात्रियों को लाने के लिए भी कई उड़ानें जाएंगी। जो विमान वहां कल से फंसे हैं और जिन्हें आने की अनुमति नहीं मिली थी, वो भी वापस आने लगेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा है कि अमरीका विमान को विस्फोटक से उड़ाए जाने की संभावना को गंभीरता से ले रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने कहा कि अमेरिका को लगता है कि हादसे की वजह चरमपंथी कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने कहा,
It is accurate to say that the United States has not made our own determination about the cause of the incident.
ये कहना सही है कि अमेरिका भी हादसे के कारणों को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन जो हम जानते हैं और जो सार्वजनिक तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है, उसके आधार पर हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें चरमपंथियों के शामिल होने की संभावना भी है। सिनाई में हुए विमान हादसे के कारणों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक चरमपंथी समूह ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन मिस्र और रूस के अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया था। रूस और मिस्र का कहना है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच पूरी करने दी जानी चाहिए। मिस्र और रूस के जांचकर्ता क्रैश विमान के ब्लैक बॉक्स की जाँच में जुटे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें वक्त लग सकता है।
बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार आपको सुना रहे थे दिलनवाज पाशा, और दिलनवाज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तमाम अखबारों को लेकर। अखबार क्या कह रहे हैं दिलनवाज
जी? कल बिहार में मतदान खत्म हुए और आज के अखबारों की सुर्खियों में एग्जिट पोल है। हिंदुस्तान लिखता है बिहार में कांटे की टक्कर, तो दैनिक जागरण कहता है बदलाव की ओर बिहार। टुडेज चाणक्य ने किया भाजपा की अगुवाई वाले राजग को 155 सीटें मिलने का दावा। वहीं दैनिक भास्कर लिखता है 5 सर्वे में महागठबंधन, 2 में एनडीए आगे। इसके साथ साथ एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है कल 24 फिल्म जगत से जुड़ी 24 हस्तियों ने अपने
पुरस्कार लौटाए,
राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाए हैं, और इनमें चर्चित लेखिका अरुंधति राय भी शामिल है। ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला ने सुर्खी बनाई है उत्तर भारत में जो ठंड अचानक बढ़ गई है, इसकी वजह बताते हुए लिखा है उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश से सर्दी ने पकड़ा जोर। एक और खबर नई दुनिया के पहले पन्ने पर है, जिसके मुताबिक श्रीनगर में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक ग्रेनेड हमला हुआ है जिसमें 11 जवान घायल हुए हैं और 4 गंभीर हैं। ये CRPF के जवान थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर बाकी अखबारों में भी है पहले पन्ने पर। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के मसले पर लोगों से राय मांगी है और ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है।
इसके अलावा मैं देख रहा हूँ अखबारों में छोटा राजन से जुड़ी खबरें भी हैं,
जी
जिन्हें आज इंडोनेशिया से भारत लाया जा रहा है।
जी, छोटा राजन आज सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्हें रिपोर्टर के मुताबिक CBI के दफ्तर ले जाया गया है। और मुंबई में महाराष्ट्र में जो मामले उन पर चल रहे थे वो CBI को सौंप दिए हैं, ये खबर भी आज के अखबारों में है।
और इसके अलावा जो खबरें मैं देख रहा हूँ ठंड से जुड़ी तमाम खबरें, ये बर्फबारी की खबर आप बता ही चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया खबरों
जी। एक और खबर जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर है। इसके मुताबिक गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा है कि कुरान में जो एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत मुसलमानों की दी गई है उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, जो शर्तें उसके तहत हैं उनका भी पालन मुसलमान जो एक से ज्यादा शादी कर रहे हैं वो करें।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की तमाम समीक्षा के लिए दिलनवाज। और अब खबरें खेल की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
वर्ल्ड क्रिकेट में ऊपर जाने को देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में दोबारा, तो हमारे लिए हर सीरीज चैलेंजिंग होगी, ऑपोजिशन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम अपने प्लान्स पे फोकस करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हमें ऑपोजिशन की तरफ देखने की ज्यादा जरूरत है, जो कि ये टीम जिस चीज में बिलीव करती है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले भारत के कप्तान विराट कोहली जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम की रणनीति पर जोर दे रहे थे, दरअसल वो कल मोहाली में तब साफ नजर आई जब विकेट स्पिनरों का मददगार साबित हुआ। कभी तेज गेंदबाजों का मददगार माने जाने वाला मोहाली का विकेट घास रहित नजर आया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम केवल 201 रनों पर सिमट गई। तो स्टंप के समय तक दक्षिण अफ्रीका ने भी 28 रन पर अपने 2 विकेट खो दिए। वो तो भारत के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने 75, चेतेश्वर पुजारा ने 31 और टेस्ट टीम में वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने 38 रन बनाकर जैसे तैसे भारत को बचाया, वरना दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर डीन एल्गर और इमरान की घूमती गेंदे भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। एल्गर ने केवल 22 रन देकर 4 और इमरान ताहिर ने 23 रन देकर 2 विकेट लिए। कल भारत के कप्तान विराट कोहली का जन्मदिन भी था, लेकिन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने उन्हें विकेट पर रनों का जश्न मनाने का अवसर नहीं दिया और डीन एल्गर के हाथों तब कैच कराया जब वो केवल 1 रन पर थे। डेल स्टेन तो कल कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन उनके जोड़ीदार वर्नोन फ्लिंडर ने 38 रन देकर 2 विकेट लिए। कल स्टंप के समय डीन एल्गर 13 और कप्तान आशिम आमला 9 रन बनाकर खेल रहे थे। उधर शारजाह में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 127 रन से करारी मात दी। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 284 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उनकी पूरी पारी 156 रनों पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टेयर कुक ने सबसे अधिक 63 रनों की पारी खेली, बाकी कोई भी बल्लेबाज जमकर नहीं खेल सका। पाकिस्तान के लेग ब्रेक गेंदबाज यासिर शाह ने 44 रन देकर 4 और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले शोएब मलिक ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में 151 रनों की शतकीय पारी खेलने वाले पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।
खेलों की दुनिया का हाल आपको सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और सभा के समापन से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर।
बिहार में अंतिम चरण का मतदान कल पूरा होने के बाद दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। ब्रिटेन के मिस्र के पर्यटन शहर शर्मल शेख के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाने के बाद कई और देशों ने भी शर्मल शेख के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं। MSF का कहना है कि कुंदूज में उसके अस्पताल से भाग रहे डॉक्टरों और मरीजों पर हवा से गोलियां चलाई गईं। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट और कंजर्वेटिव पार्टियों के सत्ताधारी गठबंधन ने प्रवासियों की शरण लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर विवाद को सुलझा लिया है। अमेरिका के अंतरिक्ष शोध संस्थान नासा ने नया डाटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अरबों साल पहले कैसे सूरज ने मंगल ग्रह के वातावरण को नष्ट किया था। रासायनिक हथियारों पर नजर रखने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकारी का कहना है कि सीरिया में विद्रोही गुटों ने भी मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया है। ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये पहली बार है जब सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि की गई है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अभी के लिए बस इतना ही। ठीक एक घंटे बाद आपसे मिलेंगे, कार्यक्रम होगा विश्व भारती। इस दौरान आप दुनिया भर की तमाम खबरों को जानने के लिए आइए bbchindi.com पर। एक खबर दिलचस्प, योगी आदित्यनाथ को दिया करारा जवाब, वीडियो बनाने वाले का वीडियो हुआ वायरल। जरूर पढ़ें bbchindi.com पर। अभी के लिए विदा।